नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द स्पेशल वेब गैब्रियल रेने और डैन मैप्स की तकनीक और सार्वजनिक नीति पर केंद्रित पुस्तक है। यह तर्क देती है कि इंटरनेट का अगला रूप केवल वेब पेज ऐप और सोशल मीडिया का विस्तार नहीं होगा, बल्कि भौतिक स्थानों, वस्तुओं, लोगों, डेटा और स्वायत्त प्रणालियों को जोड़ने वाला त्रिआयामी नेटवर्क होगा। पुस्तक के अनुसार संवर्धित और आभासी वास्तविकता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एज कंप्यूटिंग और वितरित लेजर जैसी तकनीकें मिलकर इस परिवर्तन को संभव बनाती है। इसका उद्देश्य भविष्यवाणी भर करना नहीं, बल्कि पाठक को उस आधारभूत ढांचे से परिचित कराना है जिसमें मशीनें संदर्भ समझ सके, वास्तविक और डिजिटल परिवेश परस्पर क्रिया कर सके और सेवाएं अधिक स्वचालित बन सके। साथ ही लेखक चेतावनी देते हैं कि ऐसी क्षमता के लिए खुले मानक, निजता, सुरक्षा, जवाबदेही और लोकतांत्रिक शासन आवश्यक हैं। इसलिए यह पुस्तक तकनीकी दृष्टि, व्यावहारिक उपयोग और नैतिक प्रश्नों को एक साथ रखती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, स्पेशल वेब में इंटरनेट स्थान और संदर्भ को समझने वाला नेटवर्क बनता है। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि मौजूदा वेब मुख्यतः दस्तावेजों, लिंक और स्क्रीन आधारित सेवाओं का नेटवर्क है, जबकि स्पेशल वेब लोगों, स्थानों, वस्तुओं और डिजिटल सामग्री के बीच संबंधों को संदर्भ सहित व्यक्त करने का प्रयास है। यहाँ संदर्भ का अर्थ केवल किसी वस्तु का नाम नहीं है। किसी प्रणाली को यह समझने योग्य होना चाहिए कि वस्तु कहाँ है, उसके आसपास क्या है, वह किस स्थिति में है, किसकी अनुमति लागू होती है और उसके साथ कौन सी कार्रवाई सुरक्षित है। इसीलिए पुस्तक इसे केवल मेटावर्स का दूसरा नाम नहीं मानती। आभासी दुनिया इसका एक दृश्य रूप हो सकती है, पर अवधारणा में कारखाने, परिवहन तंत्र, घर, शहर और सार्वजनिक अवसंरचना भी आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी गोदाम की डिजिटल जानकारी उपयोगी तभी होगी जब रोबोट, कर्मचारी और प्रबंधन प्रणाली एक ही वस्तु, उसके स्थान और उसकी वर्तमान स्थिति को संगत रूप से पहचान सके। स्थान आधारित साझा और मशीन पठनीय संदर्भ से स्वचालन अधिक सटीक हो सकता है। लेकिन पुस्तक का निहित आग्रह यह भी है कि हर वस्तु को जोड़ देना पर्याप्त नहीं है। पहचान, पहुंच और सूचना के अर्थ के लिए साझा नियम होने चाहिए, नहीं तो अलग अलग प्रणालियां फिर से बंद तकनीकी द्वीप बन जाएंगी। दूसरा, चार तकनीकी धाराओं का संगम स्पेशल वेब की कार्यक्षमता बनाता है। लेखक स्पेशल वेब को किसी एक आविष्कार के बजाय चार परस्पर निर्भर तकनीकी धाराओं का संगम मानते हैं। पहली धारा इमर्सिव तकनीक है, जिसमें संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता भौतिक तथा डिजिटल सूचना को देखने और अनुभव करने के नए माध्यम देती है। दूसरी भौतिक धारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स है, जो सेंसरों और मशीनों के जरिए वातावरण से डेटा लेती और उसमें कार्रवाई करती है। तीसरी संज्ञानात्मक धारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग है, जो विशाल डेटा में पैटर्न, अर्थ और संभावित निर्णय खोजती है। चौथी वितरित धारा एज कंप्यूटिंग और वितरित लेजर तकनीक है, जो डेटा, गणना, पहचान और लेन देन को अधिक विकेंद्रीकृत ढंग से संभालने की संभावना देती है। पुस्तक का उपयोगी पक्ष इन तकनीकों को अलग अलग फैशन शब्दों के रूप में नहीं देखना है। केवल एआर चश्मा संदर्भ नहीं समझता, केवल सेंसर विश्वसनीय निर्णय नहीं लेता और केवल एआई को वास्तविक परिवेश का साझा मॉडल नहीं मिलता। जब ये पर्दे संगत ढंग से जुड़ती हैं, तब दूरस्थ निरीक्षण, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, सहयोगी रोबोट और स्थान आधारित डिजिटल सेवाएं संभव होती हैं। फिर भी लेखक का ढांचा यह नहीं कहता कि तकनीकी मेल अपने आप सामाजिक लाभ देगा। उपयोगिता की गुणवत्ता डेटा की विश्वसनीयता, प्रणाली की सुरक्षा और मानवीय नियंत्रण पर निर्भर रहेगी। तीसरा, इंटरऑपरेबिलिटी के बिना खुला स्पेशल वेब बंद प्लेटफॉर्मों में बंट सकता है। पुस्तक में मानकों और प्रोटोकॉल का महत्व तकनीकी विवरण भर नहीं, बल्कि शक्ति और पहुंच का प्रश्न है। यदि हर उपकरण निर्माता, शहर, प्लेटफॉर्म या आभासी सेवा स्थान, पहचान, वस्तु और लेन देन को अलग भाषा में परिभाषित करे, तो उपयोगकर्ता और संस्थाएं कुछ बड़े बंद तंत्रों पर निर्भर हो सकती है। ऐसी स्थिति में डेटा ले जाना कठिन होगा, सेवाओं के बीच सहयोग सीमित रहेगा और नवाचार के लिए प्रवेश लागत बढ़ेगी। लेखक साझा प्रोटोकॉल और मॉडलिंग भाषा की आवश्यकता इसी समस्या के समाधान के रूप में रखते हैं। तुलना सामान्य वेब से की जा सकती है, जहां व्यापक रूप से अपनाए गए मानकों ने अलग अलग कंप्यूटरों और वेबसाइटों के बीच संचार को संभव बनाया। स्पेशल वेब में चुनौती अधिक जटिल है, क्योंकि सूचना सिर्फ पाठ नहीं बल्कि स्थान, समय, भौतिक वस्तु, अधिकार और कार्रवाई से जुड़ी होगी। बाद के वर्षों में IEEE द्वारा हाइपरस्पेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल और हाइपरस्पेस मॉडलिंग लैंग्वेज को मंजूरी मिलना इस दिशा में उल्लेखनीय संस्थागत विकास है। फिर भी मानक अपनाए जाने और वास्तविक सार्वभौमिकता में अंतर होता है। पुस्तक की स्थायी प्रासंगिकता इस प्रश्न में है कि कौन नियम लिखता है। वे कितने खुले हैं और छोटे डेवलपर, सार्वजनिक संस्थान तथा नागरिक उनके निर्माण में कितनी भागीदारी रखते हैं। चौथा, निजता। सुरक्षा और शासन को डिजाइन के आरंभिक सिद्धांत मानना आवश्यक है। द स्पेशल वेब तकनीकी संभावनाओं के साथ मौजूदा इंटरनेट की समस्याओं को भी सामने रखती है, जिनमें हैकिंग, भ्रामक सूचना और निगरानी आधारित व्यावसायिक मॉडल शामिल है। स्पेशल वेब में जोखिम का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि प्रणालियां केवल ऑनलाइन पसंद या संदेश नहीं, बल्कि स्थान, गतिविधि, मशीन व्यवहार और वास्तविक दुनिया के संसाधनों से जुड़ सकती है। यदि किसी प्रणाली को किसी घर, वाहन, कार्यस्थल या सार्वजनिक जगह का लगातार संदर्भ मिलता है, तो डेटा संग्रह और निगरानी के प्रश्न अधिक गंभीर हो जाते हैं। इसलिए लेखक नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार ढांचे, स्पष्ट नियमों तथा जवाबदेह शासन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। व्यावहारिक अर्थ में इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता की सहमति समझने योग्य हो, पहचान और पहुंच पर नियंत्रण हो, डेटा के उपयोग का पता लगाया जा सके और स्वायत्त निर्णयों के लिए जिम्मेदारी तय हो। सुरक्षा को बाद में जोड़ा जाने वाला फीचर मानना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी जुड़ी हुई भौतिक प्रणाली में डिजिटल विफलता का असर वास्तविक नुकसान तक पहुंच सकता है। पुस्तक किसी तैयार कानूनी संहिता का दावा नहीं करती, बल्कि इंजीनियरों, मानक संस्थाओं, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के बीच सहयोग की मांग रखती है। इसका मुख्य तर्क है कि भरोसा केवल एन्क्रिप्शन से नहीं बनता, बल्कि पारदर्शिता, अधिकारों और प्रभावी जवाबदेही के संयुक्त ढांचे से बनता है। अंत में, व्यक्तिगत सुविधा से स्मार्ट शहरों तक उपयोग का वादा और स्वचालन की सीमाएं, पुस्तक स्पेशल वेब को व्यक्तिगत, व्यावसायिक, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर लागू होने वाली संरचना के रूप में प्रस्तुत करती है। व्यक्तिगत स्तर पर संदर्भ समझने वाली सेवाएं सूचना को स्थान और परिस्थिति के अनुसार अधिक उपयोगी बना सकती है। व्यवसायों में डिजिटल मॉडल, सेंसर और AI मिलकर आपूर्ति श्रृंखला, रखरखाव, परिसंपत्ति प्रबंधन और कार्यस्थल सहयोग में बेहतर समन्वय दे सकते हैं। शहरों के संदर्भ में परिवहन, ऊर्जा, सार्वजनिक सुरक्षा और अवसंरचना का वास्तविक समय का दृश्य निर्णय क्षमता बढ़ा सकता है, पर पुस्तक की उपयोगिता को समझने के लिए स्वचालन और स्वायत्तता में अंतर देखना जरूरी है। कोई प्रणाली कार्य को तेजी से कर सकती है, लेकिन उसे सही लक्ष्य, निष्पक्ष नियम और विश्वसनीय डेटा भी चाहिए। उदाहरणतः यातायात प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना उपयोगी है, पर यह तय करना कि किस इलाके को प्राथमिकता मिलेगी केवल तकनीकी प्रश्न नहीं है। इसी तरह स्मार्ट गोदाम में मशीनों का समन्वय उत्पादकता बढ़ा सकता है, किंतु श्रम, सुरक्षा और निगरानी के प्रभावों पर भी विचार चाहिए। पुस्तक का मजबूत पक्ष यह है कि वह अनुप्रयोगों को विज्ञान कथा के चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि नेटवर्क, डेटा, मानक और शासन पर निर्भर व्यवस्था की तरह देखती है। पाठक को इसके दावों को निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि दिशा और डिजाइन संबंधी प्रस्ताव के रूप में पढ़ना चाहिए। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, संवर्धित वास्तविकता, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन और वेब 3.0 को अलग अलग प्रवृत्तियों के बजाय एक उभरती हुई प्रणाली के रूप में समझना चाहते हैं। तकनीकी रणनीति बनाने वाले व्यावसायिक नेता, उत्पाद प्रबंधक, शहरी नवाचार से जुड़े लोग, नीति निर्माता और डिजिटल अधिकारों में रुचि रखने वाले पाठक इससे एक उपयोगी वैचारिक नक्शा पा सकते हैं। यह शुरुआती तकनीकी पाठक के लिए भी सुलभ है, क्योंकि इसका उद्देश्य गहन प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण नहीं, बल्कि परिवर्तन की संरचना समझाना है। अधिक विशेषज्ञ पाठक इसे विस्तृत इंजीनियरिंग विनिर्देशन के बजाय मानकों, इंटरऑपरेबिलिटी और शासन के पक्ष में रखे गए तर्क के रूप में अधिक मूल्यवान पाएंगे। समान श्रेणी की कई पुस्तकें मेटावर्स, ब्लॉकचेन या AI को अलग बाजारों और उत्पादों के रूप में पेश करती है। द स्पेशल वेब की अलग पहचान यह है कि यह इन तकनीकों को भौतिक दुनिया से जोड़ने वाले साझा संदर्भ, पहचान और प्रोटोकॉल की समस्या पर केंद्रित करती है। यह उत्साह के साथ चेतावनी भी रखती है। पुस्तक मानती है कि जुड़ी हुई बुद्धिमान प्रणालियां दक्षता और नई सेवाएं दे सकती हैं, लेकिन बिना खुले मानकों। निजता, सुरक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए केंद्रीकरण तथा निगरानी को भी बढ़ा सकती है। यही संतुलन इसे केवल भविष्यवादी प्रचार से अलग बनाता है। इसे पढ़ने का व्यावहारिक लाभ किसी एक उपकरण की खरीद तय करना नहीं, बल्कि यह पूछना है कि भविष्य की तकनीकी व्यवस्था में कौन सी जानकारी जुड़ेगी, किसके नियंत्रण में रहेगी और किन नियमों के तहत वास्तविक दुनिया में कार्रवाई करेगी। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं गैब्रियल रेने, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।